لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلناكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام. عاشور کا پورا دن مکمل، تو یہ جملہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کیا کہ عاشور کا پورا دن فجر سے لے کر شام غریبہ تک، جب دو مومنات ملاقات کریں تو حکم ہے کہ یہ دعا دہرائیں: وجعلنا وإياكم من الطالبین، اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ لیں گے مع ولیہ، حسین کے ولی حسین کے وارث کے ساتھ مل کر. اب یہ دعا آپ مسلسل کل سارا دن پڑھیں گے، دہرائیں گے، لیکن جس آیت سے یہ دعا امام معصوم نے عکس کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی، یہ دعا تو امام کی ہے لیکن آیت وہ آیت بھی شب معراج کی آیت ہے. اور آج خطبے کے بعد میں نے پہلے اسی آیت کی تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل میں، جہاں درمیان میں معراج کا تذکرہ ہوا، ایک شروع میں، ایک آخر میں، ایک درمیان میں. تو یہ آیت ومن قتل مظلوما، جو مظلوم مارا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے وارث کو حق دیا، اختیار دیا کہ وہ اپنے مظلوم کے قتل کا بدلہ لے. یہ حکم شب معراج آ رہا، اور عاشور کا پورا دن، چونکہ آپ کو زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے اس دعا کی شکل میں، اس لیے میں نے اس کے بعد خطبے میں دوسری آیت وہ تلاوت کی جو ہمارے یہاں مریض کی شفایابی کے لیے پڑھی جاتی اور صحیح پڑھی جاتی، لیکن اصل میں یہ آیت زمانے کے امام کے لیے: امن یجیب المضطر اذا دعا، جب مضطر دعا کرتا تو کون ہے جو اس کی دعا کو پورا کرتا ہے، جواب دیتا ہے، وہ یکشف السوء، اور پریشانی دور کر لیتا. مضطر امام زمانہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے، یہ ون آف دا ٹائٹل آف امام زمانہ. امن یجیب المضطر، دعائے ندبہ میں، دعائے ندبہ ایوری فرائیڈے آپ تلاوت کرتے ہیں، این المضطر این المضطر، آپ امام کا نام لیتے ہیں. इमाम का एक नाम है मुस्तर, तो ये आयत में बुनियादी एतबार से इमाम का तस्किरा, जमाने का इमाम। हम और आप तो इस आयत में सप्लीमेंट्री तरीके से आते हैं। असलन ये आयत जमाने के इमाम को बयान कर रही कि जब ये इमाम जमाना जो मुस्तर है अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह जवाब देता है और परेशानी दूर करता। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इमाम जमाना क्या दुआ करते हैं, कौन सी परेशानी है जो अल्लाह दूर करता। बस आज की रात शबे जुमा मजलिस के शुरू में थोड़ा सा बयान यही करना, और वो ये कि देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे जमाने का इमाम अपने हर चाहने वाले, अपने हर मानने वाले, अपने हर शिया के लिए हर वक्त दुआ करता रहता। परेशानी हमारे घर में आती, दुआ के लिए हाथ उठ जाते हैं इमाम जमाना के। बीमार हम होते हैं, शफायाबी की दुआ जमाने का इमाम कर रहा। औलाद को हमारी कोई मसला पेश आता, अल्लाह की बारगाह में दौड़ के जमाने का इमाम जा रहा। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ रहा, हमसे ज्यादा जमाने का इमाम तड़प तड़प के अल्लाह से दुआ कर रहा। रिवायतों का एक सिलसिला है कि इमाम ने फरमाया कि हम अपने एक एक शिया की हालत को मॉनिटर करते रहते हैं, और जहां उसके घर में कोई परेशानी आ जाए तो पहली दुआ उसके लिए हम करते। और फिर अगर साहिबान ईमान पर कोई इम्तिहान, कोई मुसीबत, कोई बला, कोई परेशानी उनके अकीदे की वजह से आ रही, एक तो होता है ना हमारे पर्सनल प्रॉब्लम, सेहत है, औलाद है, घर के झगड़े हैं, रोजी का मसला है, वीजे का मसला है, यह हर आदमी के पर्सनल मसले, इसमें भी जमाने का इमाम दुआ कर रहा। और एक है कि मोहब्बत अहले बैत की वजह से जब हमें टॉर्चर किया जाता, वाकयात पेश आ रहे हैं, खुदा 15 साल के उस बच्चे को जल्द अज जल्द और कंप्लीट शफा और रिकवरी अता करे जो कल इमाम बारगाह के सामने जख्मी हुआ। गर्चे अभी यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि वाकया क्या, मोमिन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जब तक शरई तरीके से उसे असल हकीकत पता न चले वो बहुत एहतियात करे। लेकिन ये बात जो कि थोड़ी देर के बाद मेरी मजलिस में आने वाली है इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाता हूं, लेकिन इस वाकये के बारे में अभी हमें तफसीलात नहीं मालूम, एक आम किस्म का कोई हेट क्राइम था या वाकान इसका कोई ताल्लुक हमारे नजरिए से था दुनिया भर में। साहिबान ईमान दूसरे मुल्कों में मजालिम का निशाना तो बन रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, कराची में आशूरे के जुलूस में बम के कितने धमाके हुए और कितने मोमिनीन शहीद हुए, क्वेटा कितने साहिबान ईमान हत्ता आशूरे के जुलूस में भी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहुत ही रिसेंट वाकया। तो अब ये तो साहिबान ईमान को बड़े बड़े इम्तिहान देना पड़ रहे हैं, खून बह रहा, लाशें गिर रहे हैं, जवान बच्चे हमारे मारे जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम मौकों पर इमाम ने हमें सख्ती के साथ एक हुक्म दिया कि अपने जज्बात को कंट्रोल में करना। और यहां पे मैं एक ऐसी बात कह दूं जो आधा मजमा मुझसे एग्री नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल वो हमारे मजहब का बुनियादी नजरिया, और वो ये कि जैसा परसों रात हजरत अब्बास के मसाइब के दरमियान एक जुमला मैंने कहा, और वो ये उसको तो 100% लोग एग्री करेंगे, उसी जुमले को जरा आगे बढ़ा रहा हूं एक्सटेंशन, 50% लोग डिसएग्री, मगर बहरहाल वो एक ही सीक्वेंस में दोनों जुमले। हजरत अब्बास वाला जुमला तो बहरहाल उसूल दीन में शामिल है कि जो इमाम कहता ये समझो कि इमाम नहीं कह रहा है, खुद अल्लाह आपसे कह रहा, इमाम का हर हुक्म अल्लाह का हुक्म है। इमाम के हुक्म के बाद आपको ये नहीं कहना کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ جو ہمارے یہاں داڑھی کے حوالے سے آرگومنٹ ہوتا ہے کہ داڑھی قرآن میں کہاں لکھی، امام کا حکم ایسا ہی ہے جیسے اللہ کہہ رہا. چنانچہ حضرت عباس کو امام کا آرڈر آ گیا، یعنی اللہ کا آرڈر. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے، مانتا ہے، اس پر عقیدہ. لیکن غیبت کے اندر جو مرجع وقت کہہ رہا ہے، یہ سمجھیے کہ گویا امام کہہ رہا. مجھے معلوم ہے کہ آدھے لوگ تو اس سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن غیبت امام میں مرجعیت کا یہ پورا انسٹیٹیوشن جو ہمیں بنا کے دیا گیا، یہ کسی آدمی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خود امام معصوم کا بنایا ہوا. اور اس پر مزید بات زیارت کے مجلس میں میں کروں گا، کیونکہ آج سب لوگ یہ باتیں سننے کے لیے نہیں آئے. شب عاشور، غم کا بیان زیادہ سننا ہے یا بہت ہلکی پھلکی باتیں؟ خیر، میں اپنا میسج تو دوں گا، لیکن یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، بعد میں بہرحال یہ سمجھ لیجیے. ہمارے یہاں مرجع کا حکم اسی طرح سے ہے جیسے امام کا حکم ہے. مرجع غلطی کر سکتا، امام غلطی نہیں کر سکتے، فرق ہے. لیکن مرجع کی غلطی جب ہوگی تو امام کسی طریقے سے بتا دیں گے. اب یہ ایک الگ مسئلہ، کیسے بتائیں گے؟ مرجع وقت آیت اللہ سیستانی نے جو خاص ہمیں اور آپ کو ایڈوائس کی، چار پانچ ایڈوائس ان کی ایسی جو بار 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 وہ ریپیٹ کرتے ہیں. اب اگلا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے خود اچھا نہیں لگتا ہے، ذرا سا ممبر پر کچھ اپنی ذاتی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ اس لیے کہنا پڑ رہا تاکہ جو اصل بات ہے وہ پروو ہو جائے. اور وہ یہ کہ سال میں، اب آج کل تو تقریباً دو مرتبہ میں کربلا یا عراق کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اس سے پہلے تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، اور اکیلے زیارت کا موقع مجھے بہت کم ملتا. کبھی اکیلے کا ارادہ بھی کرتا ہوں اور خبر پھیل جاتی ہے تو گروپ بن جاتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں. تو پہلے بہت زیادہ آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کا موقع ملتا تھا. اب میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کی مصروفیات تو جب کبھی کسی بھی گروپ کے ساتھ، کسی بھی قافلے کے ساتھ زیارت کے لیے گیا اور آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی، تو چار ان کی ایڈوائس تو ہمیشہ میں نے سنی. اور یاد رکھیے گا کہ بعض ایسے لوکل پرابلمز ہیں کہ اس پر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ہر ایک سے نہیں کرتے. مثلا کچھ ویسٹ کے پرابلم، پاکستان کا قافلہ آئے گا، اس سے وہ بات نہیں کہیں گے، ان کے پاس ایک تو ٹائم بھی کم ہے. اور پھر ٹو دا پوائنٹ بات، کچھ پاکستان کے لوکل مسئلے، پاکستانی قافلے کے ساتھ جاؤں گا، وہ باتیں کہیں گے، وہ آپ سے نہیں کہیں گے. تو لیکن چار باتیں ایسی جس قافلے کے ساتھ میں گیا، کینیڈا، انگلینڈ، نارتھ امریکہ، گلف، انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا، یہ چار باتیں جب پہلے آرام سے وقت ملتا تھا بات کرنے کا، چار باتیں ہمیشہ ریپیٹ کی گئیں. ان میں سے صرف ایک بات، اور وہ یہ کہ اس وقت جو اصل دشمنان اہل بیت ہیں، ان کا مین ٹارگٹ ہے شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے اس کو بڑھانا. بلکہ آپ کو ان کا مشہور جملہ بھی یاد ہوگا کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، ایک گروپ کی بات، اور ایک مومن نے جوش میں کہا کہ نہیں، ہم اویر ہیں، ہم انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، روک دیا کا بھائی نہیں سمجھو، پارٹ آف دا باڈی، وہ تمہارا حصہ ہے، ان کو اپنا آپ سمجھو جیسے تمہارے جسم کا حصہ ہے. بھائی کے اندر بھی ذرا سا یہ کنسپٹ آ جاتا ہے کہ دو الگ الگ ہیں. بہرحال چونکہ آج کی مجلس میں وقت کم ہے، اس اعتبار سے میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ نصیحت کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، یورپ، مڈل ایسٹ، انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا، हर ग्रुप को उन्होंने ये नसीहत की। और दुश्मन का एक तरीक़ाकार ये भी होता कि एक वाकया यहां पेश आता, एक वाकया वहां पेश आता, उनसे कहता है इन्होंने किया, इनसे कहता है कि उन्होंने किया। बात हमें इस मामले में आज के दौर में अवेयर होके बैठना है, अपने दुश्मन की साजिश को समझना भी है। और यही करबला का अहम तरीन मैसेज है। उस वक्त यजीद को अमीर उल मोमिनीन और खलीफा वक्त कहने वाले कितने थे? बहुत ज्यादा। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा था उसके इन्फ्लुएंस में कितने ज्यादा लोग थे कि हुसैन की शहादत को एक बागी की मौत नऊज़ु बिल्लाह करार दे रहे थे। लेकिन मैं जरा सा अपने ट्रैक से हट रहा हूं, असल उनवान पे आ जाता हूं। और वही कि साहिबान ईमान के पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, मुज़्तर है जमाने का इमाम तड़प तड़प के आपके लिए दुआ करेगा। या अगर हमारे मजहब के हवाले से हम किसी मुसीबत और परेशानी में जाए तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए जमाने का इमाम दुआ करेगा। अम्मा युजीब उल मुस्तर। मगर एक बहुत ही सिंपल सा सवाल कि मौला, अब ये मैं इमाम से सवाल कर रहा हूं, मौला आप ये जो अपने आप को इतनी जहमत में डाल रहे हैं, गौर से सुनिएगा ये सवाल जो मैं इमाम से कर रहा हूं, और इसका वो जवाब जिसके लिए मैंने दो दिन पहले खुतबे में इमाम के लकब को या टाइटल को चेंज किया, मुंतजर के बदले मुंतजर पढ़ा, तो ये आज की बात थी। तो सवाल पहले गौर से सुनिए कि मौला, ये जो आप खुद अपने आप को इतनी तकलीफ में और इतनी जहमत में डाल रहे हैं कि साहिबान ईमान के प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, पाकिस्तान में कोई वाकया हुआ, मिडिल ईस्ट में कोई वाकया हुआ, सीरिया में कोई वाकया हुआ, बात को लंबा करने का फायदा नहीं, आप दुआ करते, इससे ज्यादा आसान क्या ये नहीं है कि आप जाहिर हो जाए? और जाहिर जब आप हो जाएंगे तो मोमिन की दोनों परेशानियां दूर हो जाएंगी। ज्यादा सिंपल और इजी रास्ता है ना। इमाम के आने के बाद सेहत का मसला नहीं होगा, हर आदमी परफेक्शन की मंजिल पे जाएगा, कोई बीमारी इस दुनिया में नहीं रहेगी। इमाम के जाहिर होने के बाद रिस्क का कोई मसला इस दुनिया में नहीं रहेगा। इमाम के जाहिर होने के बाद जो शौहर बीवी बाप बेटा खानदान के झगड़े, एक पूरी लिस्ट, सारे मसले हल हो जाएंगे। और फिर जो शियत के ऊपर मुश्किलात का जमाना आता, कभी क्वेटा में, कभी कराची में, कभी यमन में, कभी सीरिया में, कभी नाइजीरिया में, ये सारे मसले भी हल हो जाएंगे। तो मौला बजाय इसके कि आप बार बार हर मोमिन के लिए अल्लाह की बारगाह में अलग से दुआ करते हैं और तड़प तड़प के दुआ करते हैं, कुरान ने कहा मुज़्तर, और ये जो आप बार बार पूरी शियत के लिए मिलके दुआ करते हैं, इसका आसान सलूशन क्यों इख्तियार नहीं करते? और जाहिर हो जाइए। अब देखिए इमाम का जवाब क्या होगा। इमाम का एक टाइटल है मुंतजर और एक है मुंतजिर, दोनों इमाम के टाइटल है। ज्यादा मशहूर मुंतजर, जिसका वेट दुनिया कर रही है। मुंतजिर का मतलब जो खुद वेट कर रहा। इमाम मुंतजिर क्यों है? सवाल का जवाब देंगे। इमाम कहेंगे कि मैं तो अभी जाहिर होने को तैयार हूं, क्योंकि इमाम इसलिए भी जाहिर होने के लिए तड़प रहे हैं। दो बातें आपने सुनी, आपके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर इमाम आ जाए। मिल्लते जाफरिया और कौम शिया के सारे जो बाहर से अटैक हम पर हो रहे हैं खत्म हो जाएंगे अगर इमाम आ जाए। दो बातें तो हैं, इनसे ज्यादा तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो आप कल दुआ मांगेंगे, वजअलना मिन अत्तालिबीना बिस्सारिही सार या सार अल्लाह वबन सार वलवित्र अलमौतूर। आका हुसैन के खून का बदला वो इमाम को लेना, क्या इमाम तड़प नहीं रहे होंगे? कि कितने जल्द वो वक्त आ जाए कि मैं अपने दादा हुसैन के खून का बदला लूं, तो हमसे ज्यादा इमाम को जाहिर होने की जल्दी है। मेरी उर्दू भी जरा डिफिकल्ट हो गई और स्पीड भी जरा फास्ट हो गई, मगर क्या करूं, लास्ट 3 मजालिस 10 मिनट मैंने टाइम लिमिट को क्रॉस किया। आज मैं नहीं चाहता, आज मुसलसल पूरी रात मजलिसें हैं तो बहुत जल्दी। तो मौला इमाम जमाना हमसे ज्यादा तड़प रहे हैं जाहिर होने के लिए, हमें तो इतनी केयर नहीं है, मौला क्यों नहीं आते? मुंतजिर इमाम खुद इंतजार कर रहे हैं कि मैं जल्दी से जाहिर हो जाऊं। तो इमाम का अजीब जवाब होगा, वही जो अबू ज़र गफारी ने अपने जवान बेटे की मैयत पर एक जुमला कहा था। अबू ज़र का बेटा ज़र, ज़र बेटे का नाम है, बाप का नाम है अबू ज़र, असल नाम तो कुछ और है, कुनियत। जवान बेटे की मैयत को देख के जुमला का कि बेटा तुम्हारी मैयत को देख के मेरा दिल चाहता है कि मैं मर जाऊं, बूढ़ा बाप मर जाए। अब हर बाप कहेगा ये दिन ना आता मैं मर जाऊं, लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि अगर आज मैं मर गया तो मेरा मरना तो तुम्हें फायदा नहीं देगा, तुम तो मर गए, अब अगर उसके साथ 500 आदमी भी मर जाए तो मरहूम को क्या मिलेगा, लेकिन अगर मैं जिंदा रहूं तो तेरी मदद कर सकता हूं नेकियां करके। उसी अंदाज का जुमला इमाम फरमाते हैं कि मैं अभी अगर आ जाऊं मेरा आना तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। देखिए वर्डिंग मेरी है, वो हदीसें मासूमीन की सबको मिला के, मेरा आना तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, और वो ज्यादा बड़ा नुकसान है। तुम्हारे घर में रिस्क की परेशानी है, ये छोटा नुकसान है। तुम्हारे घर में बीमारी है, ये छोटा नुकसान है। तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पे जा रही है, ये छोटा नुकसान। अब आइए कोयटा में तुम्हें शहीद किया जा रहा है, ये छोटा नुकसान। कराची में तुम्हें कत्ल किया जा रहा है, छोटा नुकसान। सीरिया और यमन में तुम मारे जा रहे, छोटा नुकसान। अगर मैं आ गया और तुम्हारी ये हालत रही जो आज है तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। मौला वो क्या बड़ा नुकसान होगा? कहा चूंकि अभी तुम मेरे लिए तैयार नहीं हो, अभी मैं आ जाऊं तो तुम बजाय इसके कि मेरी हेल्प करो, तुम ही मेरे अगेंस्ट मैदान में निकल के मेरे खिलाफ जंग करोगे। अभी अगर तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, सब्र कर रहे हो, अल्लाह रिवार्ड दे रहा, दुनिया में शहादतें हो रही है, अल्लाह जन्नत दे रहा, लेकिन अगर मेरे खिलाफ तुमने तलवार चलाई तो मेरा आना तो तुम्हें जहन्नम में पहुंचा देगा। मैं तुम्हारा ख्याल करते हुए तुम्हारे इन प्रॉब्लम्स को छोटा प्रॉब्लम समझ रहा हूं, दुश्मन के हाथों मारे जा रहे हो ना, शहादत है, और अगर मेरी तलवार से मारे गए तो हलाकत है, दुश्मन के हाथों मारे गए तो जन्नत है, इमाम जमाना की तलवार से मारे गए तो जहन्नम है। मौला आप आके तो देखिए, हम तैयार हैं आपके लिए। कहा नहीं तैयार हो, तुम जबानी मुझे बुला रहे हो, कूफे वालों ने भी मेरे दादा को जबानी बुलाया था, और इतना कि बोरियां बोरियां उस जमाने के अंदर खत से भर गईं कूफे वालों ने। उनमें वो आदमी भी था जिसका नाम पहली मजलिस में आया, आज अशरे की आखिरी मजलिस है, वैसे अशरे आशूरे के बाद एक मजलिस और होगी। शबास इब्ने रबई खत लिख के बुला रहे और हुसैन के शहीद होने पे मन्नत की और शुक्राने की मस्जिद बना रहा, और ऐसे कूफे वाले सारे थे या अक्सरियत 99.99% का बुलाने वाले तो हमको बुला चुके, फिर साथ कहा दिया। ऐसा ना हो कि यही तुम्हारी स्टोरी हो, मैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए अपने आने को डिले कर रहा हूं, शायद अभी भी अपने आप को चेंज कर लो और मेरे लिए इतना प्रिपेयर हो, तैयार होके बैठ जाओ कि फिर मेरे आने के बाद मेरी मुखालिफत नहीं होगी। अच्छा अब हम कहेंगे कि नहीं हम तो तैयार हैं। दो चीजें इमाम चेक कर रहे हैं, क्या हमारा घर इस काबिल है कि अभी इमाम आ जाए। भाई इमाम क्यों आएंगे दुनिया में? मैं अक्सर एक सवाल करता हूं कि जमाने का इमाम آج کی مجلس کا موضوع زمانے کا امام خود بخود کیوں بن گیا؟ عاشورہ کی دعا کی وجہ سے وجعلناکم من الطالبین بسارے ہی مع ولی اہل امام، یہ جو دعا آپ کل پڑھنا شروع کریں گے فجر کے بعد، اس کی وجہ سے، اور پھر اس کا بھی معراج سے کنیکشن بھی ملے گا، بلکہ اصل آیت تو معراج کی ہے جس سے یہ دعا بنائی گئی ہے، لیکن دعا اصل موضوع ہے، اللہ ہمیں اور تمہیں امام زمانہ کی فوج میں شامل کرائے، اس کے حوالے سے بات، امام کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ایک سوال کیا جائے کہ جب امام آ جائیں گے تو آپ نے اگر تاریخ نہیں پڑھی، حدیثیں نہیں پڑھی، قرآن ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، تب بھی سمپل طریقے سے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے، آپ کا تخیل کیا کہتا ہے، امام کیا کریں گے، یا دنیا میں آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ کیا پہلا اناؤنسمنٹ یہ ہوگا کہ آج سے ساری نمازیں معاف، اب کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں؟ امام آنے کے بعد کیا یہ اناؤنسمنٹ کریں گے آج سے حجاب ختم، اے مومنات اپنی ساری چادریں اور عبایا اور اسکارف اتار کے جلا دو، میں آ گیا ہوں، اب کیا ضرورت ہے حجاب کی؟ کیا امام آنے کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کیا اب جتنا زیادہ ہو سکے مکس گیدرنگ کراؤ، برتھ ڈے پارٹی بھی، میرج پارٹی بھی، جو بھی فنکشن ہو، میں آ گیا ہوں، اب میں آ گیا ہوں، حرام کھاؤ کوئی پرواہ نہیں کرو، میں آ گیا ہوں، زیادہ سے زیادہ گناہ کرو، جس نے کچھ نہیں پڑھا امام کے بارے میں، میری یہ بات بھی وہ سنے گا، وہ بھی جو کچھ نہیں پڑھا، کہے گا مولانا آپ توہین امام کر رہے ہیں، کیوں؟ امام آئیں گے تو امام تو کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں، اب اسلام کا نظام قائم ہوگا جو معراج کی رات اللہ کے رسول کو نظام دیا گیا، اب ہر ایک کو نماز پڑھنا، اب ہر عورت کو حجاب کرنا، اب ہر نوجوان کو مس گیدرنگ سے بچنا، اب ہر گھر سے غنا اور حرام میوزک نکالنا، اب ہر ایک کو حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا، تو ابھی یہ سب کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر ابھی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لیے تیار نہیں ہو، امام کہیں گے میں تمہارے بینیفٹ کے لیے ڈیلے کر رہا ہوں، مولا ہمارا کیا بینیفٹ؟ کہا کہ میں آؤں گا تو میرے مخالف بنو گے، ہم نے کہا نہیں مولا مخالف نہیں بنیں گے، ساتھ دیں گے، تو امام نے کہا میں چیک کرتا ہوں، ٹرائل کرتا ہوں تمہارا کہ کیا واقعا میرے لیے تیار ہو، دو باتیں، اپنا گھر دیکھ لیجئے جا کے کہ کیا واقعا ایسا ہو چکا ہے کہ اگر ابھی امام آ جائیں تو جیسا امام ساری دنیا کو بنانا چاہتے ہیں ویسا ہمارا گھر بن چکا ہے آلریڈی یا نہیں، ایک بات، دوسری بات، یہ دوسری بات پھر وہ، پہلی بات تو ہر آدمی مجھ سے ایگری تو کر رہا کہ ہاں بھائی ابھی تک ہم خود اور ہماری فیملی اور ہمارا گھر ویسا نہیں ہے جیسا امام چاہتے ہیں، اس میں ایگری کرے گا، دوسری بات کو ایگری نہیں کرے گا، مگر اپنی جگہ وہ بھی حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا، جیسے آقا حسین نے کہا کوفے والوں تمہارا امتحان لینے کے لیے میں مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، امام نے اپنی غیبت میں مراجع کا نظام قائم کیا، مجھے بلا رہے ہو کہ میری ہر بات مانو گے، چلو میں اپنے ایک نمائندے تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم ان کی کتنی بات مانتے ہو، وہاں تو پہلا نعرہ یہ لگتا ہے کہ نجف اور قم میں بیٹھنے والا بوڑھا مر جائے، کینیڈا اور امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ کے پرابلم کو نہیں سمجھ سکتا، ہمیں یہ مرجے چاہیے، لیکن ان علاقوں کے لیے، نجف کے لیے، یورپ کے لیے نہیں چاہیے، یہاں کے لیے لوکل مرجے ہونا چاہیے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ میں ہسٹری سے آپ کو بتا دوں، رسول اللہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوئے بہت سارے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حکومت حاصل کرنے کا ہی تو بڑا سمپل اور ایزی راستہ ہے، نبوت کا دعویٰ کرو اور تمہیں پھر دنیاوی حکومت بھی مل جائے گی، یہ تو بڑا ایزی راستہ ہے، رسول اللہ کی حکومت سارے عرب میں پھیل گئی، کہا کیوں، یہ کسی بادشاہ کے بیٹے تو تھے نہیں، نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا، और लोग आ तो इजी रास्ता उनको लगा। जैसे यजीद ने बड़ी बदतमीजी के साथ दरबार में कह भी दिया, लाएबत बनी हाशिम बिल मुल्क फला वहयुन जा वला मलकुन नजल। बनी हाशिम ने खाली हुकूमत के लिए ये एक ढोंग रचाया, ना कोई वही ना कोई फरिश्ता। ये बहुत से लोगों को ऐसा फील हुआ, बहुत इजी रास्ता। चुनाचे पैगंबर की जिंदगी के आखिरी सालों में ही झूठे नबी अरब में पैदा होने लगे। हर एक ये समझ रहा था कि अगर चेयर लेना है और तख्त पे बैठना है बहुत ही आसान रास्ता नबूवत। अब हुआ ये कि मैं हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहा हूं ना, मेरा अपना जो एक सब्जेक्ट है उसमें रह के बात कर। उसमें एक औरत भी थी सुजा, मर्दों ने भी दावा किया, कई नाम है, मुसैलिमा कज़्ज़ाब बहुत मशहूर है और कई नाम है, और एक औरत भी थी, उसने भी कहा कि मैं नबी हूं। अच्छा, उसने अपनी नबूवत के लिए जो आर्गुमेंट दिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उसने ये कहा कि रसूल सच्चे रसूल है, मैं ये नहीं कहती कि ये गलत रसूल है, लेकिन इनकी रिसालत जो है वो सबके लिए नहीं। अच्छा क्यों नहीं? कहा कि औरतों के अपने बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, एक मर्द तो वो प्रॉब्लम समझ भी नहीं सकता। ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड जुमला है सुजा का, कहा कि एक मर्द कैसे औरतों के प्रॉब्लम समझेगा जो उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको एक औरत ही समझ सकती है। तो मर्दों के लिए तो अब किसी रसूल की जरूरत नहीं है, औरतों को स्टिल एक रसूल चाहिए ताकि औरतों के प्रॉब्लम समझकर उनका सलूशन पेश करे। ये हिस्ट्री के अंदर सुजा की झूठी और खोटी नबूवत की दलील। आज यही दलील हमारे को बहुत सारे यूथ देते हैं कि मर्जी ठीक है, काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, मगर इंडिया के लिए, मगर पाकिस्तान के लिए, मगर ईस्ट अफ्रीका के लिए, मगर नजब के लिए, मगर कुम के लिए। यूरोप और अमेरिका के रिक्वायरमेंट ही कुछ और, यहां का माहौल ही कुछ और, यहां के मसाइल तो वही समझेगा जो यहां रहता हो, पार्ट हो इस माहौल का, फिर वो समझेगा और फतवा देगा। ये लोग समझते हैं कि मर्जी जैसे फतवा बनाता है, वो बनाता नहीं है कि जैसे हालात में फतवा बना दिया, वो फतवा कुरान और हदीस से देता। लेकिन अजीब बात है कि नहीं, झूठी नबूवत का ऐलान करने वाली औरत ने जो आर्गुमेंट दिया, झूठी मर्जियत को प्रमोट करने वाले आज उसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। अगरचे मर्जियत के हवाले से तो ये बात बिल्कुल गलत, मगर पैगंबर की रिसालत और नबूवत के हवाले से जो उस औरत ने इतराज किया, ये पैगंबर के जमाने की है। जैसे ही पैगंबर दुनिया से गुजर गए, इसने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। लेकिन पैगंबर के हवाले से तो इसका आर्गुमेंट बिल्कुल ही गलत, गलत भी शायद इतना गलत ना हो, सही भी है, सही भी है, लेकिन पैगंबर ने इसके आर्गुमेंट का जवाब पहले ही दे दिया। पैगंबर ने क्या जवाब दिया? पैगंबर ने वो जवाब दिया जो मेराज की रात मिला। पैगंबर शरीयत लेके आ रहे हैं ना, लेकिन शरीयत के साथ मेराज के एक तोहफे का नाम है फातिमा जहरा। जब फातिमा जहरा को लेके आए तो इस औरत के खोटे आर्गुमेंट का जवाब हो गया कि तुम कह रहे हो कि एक मर्द कैसे औरतों के प्रॉब्लम समझ सकता है। फातिमा को देखो, फातिमा फातिमा पैगंबर का टुकड़ा है, फातिमा पैगंबर का जुज है, फातिमा तो बजातों में नहीं, फातिमा मेरा हिस्सा है। ये नहीं कहा मेरे जिगर का हिस्सा है, मेरी बॉडी का हिस्सा है, का मेरा हिस्सा है। चुनाचे जहां जहां औरतों को पैगंबर की रिसालत समझने में परेशानी होगी, वहां फातिमा की सीरत सामने आ जाएगी। फातिमा मामूली जात का नाम नहीं है, फातिमा फातिमा पैगंबर की रिसालत को मुकम्मल करने वाली। अलबत्ता जो मैंने मेराज में जुमला कहा, मेराज की दुआ का आखिरी दो टुकड़े, पैगंबर ने रहमत मांगी वो फातिमा, पैगंबर ने मददगार मांगा वो अली, ये दो पैगंबर को मेराज के तोहफे मिले। तो याद रखिए, अली उसका नाम है जो दीन को मुकम्मल करता है, अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम, और फातिमा उसका नाम है जो रसूल की रिसालत को मुकम्मल किया करती है। अली और फातिमा की मैचिंग पूरा एक अशरा हो सकता है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं, यह मसला यूरोप की बात नहीं कहता, अपने पाकिस्तान की बात कहता हूं। हो सकता कभी कोई औरत इतने सारे कामों में बिजी हो कि वो पैगंबर पे एतराज कर दे, मसलन नमाज का वक्त आ गया, नमाज भी पढ़ना, शौहर को घर में आना है, उसके लिए खाना भी पकाना। हमारे यहाँ तो नमक तेज होने पे तलाकें हो जाती हैं, यहाँ तो खेल नहीं है, वहां तो खेल है ना। बच्चा रो रहा है, बच्चे को भी बहलाना, बहुत शदीद गर्मी है और वो औरत गर्मी से परेशान, और एक बार कहती है कि रसूलुल्लाह को क्या पता, वो औरत होते तो उनको मालूम होता औरत के लिए कितना मुश्किल है, घर के काम भी करना है, शौहर का भी ख्याल करना, बच्चे को भी बहलाना, नमाज भी पढ़ना। वो तो जबान से कह के चले गए, बदतमीज औरतें रूड औरतें ऐसी होती, वो जो कह के चले गए। खुद औरत होते तो पता चलता, पैगंबर ने कहा मेरी बेटी मेरी रिसालत का हिस्सा, फातिमा बताएगी गर्मियों में चक्कियां पीस कर, बच्चों को पाल कर, नमाजें पढ़ के शौहर की खिदमत किस तरह की जाती है। फातिमा वो रोल मॉडल बनेगी जो पैगंबर की रिसालत को सुजा की दलील, औरत के लिए औरत नबी होना चाहिए, वजूद है फातिमा उसकी दलील को तोड़ रहा। फातिमा, और याद रखिए फातिमा मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, आजकल की भाषा में बात करूं, फातिमा आज की रात एक जुमला कह दूं, फातिमा का घराना आज की रात आबाद है, कल की रात बर्बाद हो जाएगा। फातिमा कायनात का पासवर्ड, ये आप दुआ में भी अक्सर पढ़ते हैं, बेहक फातिमा व अंत फातिर समावात वल अर्ज, अल्लाह फातिर है जमीन और आसमान का, क्रिएटर ओरिजिनेटर वो फातिर है, और उसने फातिमा को बनाया कि फातिमा इस कायनात का यूनिवर्स का पासवर्ड। एक वाकया आप आजकल अक्सर सुनते हैं, मैं वाकया नहीं पढ़ रहा, बहुत ज्यादा मशहूर, लेकिन अक्सर सुनते हैं करबला के 100 साल पहले के उस अजीम आलिम का, कि जैसे आज की जनरेशन आयतुल्लाह बहजत के नाम को जानती है तो जहन में मोजिजे आ जाते हैं, इल्मे इरफान आ जाते हैं। इससे पहले तारीख में अहम तरीन नाम आगाए मुर्तुजा कश्मीरी का था, जो करबला के 100 साल पहले के आलिम, और उनका एक मशहूर वाकया वो लॉक अनलॉक करने वाला, बहुत ही मशहूर वाकया ना, कि किसी ने आकर कहा मिडनाइट कि मेरा घर लॉक है, की जो है मैं खो चुका हूं, घर खुल नहीं रहा, कहा चलो मेरे साथ, और वहां जाके कुछ पढ़ा और वो लॉक खुल गया। उसने कहा ये आपने क्या पढ़ा, कहा मैंने अपनी दादी फातिमा का नाम पढ़ा कि नाम है फातिमा से ये लॉक खुला, क्योंकि उसने आकर कहा था मुझे मूसा की माँ का नाम बताइए, पब्लिक में मशहूर है कि मूसा की माँ के नाम से लॉक खुल जाते हैं। तो कहा जब तूने ये कहा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मादर मूसा के नाम का इतना एहतराम और इतनी पावर है, मेरी दादी तो उनकी भी सरदार है, उनके नाम में इससे ज्यादा ताकत होगी। लेकिन खाली एक लॉक नहीं खुलता, नाम फातिमा से कल कुछ दुआएं आई थी और आज भी बाद मोमिनी ने दुआ के लिए कहा, शब आशूर कौन दुआ मांगे, आशूर के दिन कौन दुआ मांगे, मगर अमल आशूरा में दुआ शामिल है कि नहीं। या आले मोहम्मद का वो अपने गुलामों के साथ सुलूक है कि वो आले मोहम्मद आशूर के प्रॉब्लम्स में हैं और हमारे लिए दुआ करवा रहे हैं, हमारी रोजी की बात कर रहे हैं, हमारे घर के प्रॉब्लम। जो मैंने उस दिन हबीब इब्ने मुजाहिर के हवाले से जुमला कहा, 18 लाशें जैनब के घर के पुरसा दे रही है सौजह हबीब को, यह आले मोहम्मद का तरीका। तो खैर, नाम फातिमा याद रखिए, जो पहले होटल्स में एक मास्टर की होती थी, हर रूम की अलग की है लेकिन एक मास्टर की है जिससे हर रूम खुल जाएगा। आजकल पासवर्ड आता, आप किसी भी स्मार्टफोन का पासवर्ड मालूम हो गया, किसी के कंप्यूटर का पासवर्ड मालूम हो गया, पासवर्ड मालूम हुआ तो आपने उसकी सारी बातें कंट्रोल कर ले। कायनात का पासवर्ड नाम है फातिमा। एक रिवायत अपने जुमलों में बता रहा हूं, वक्त बहुत कम है और आज मोमिनीन कराम थोड़े से ज्यादा है तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इख्तिताम पे जा रहा हूं और वैसे भी टाइम तो पूरा हो गया। रिवायतों में जुमला आया, सारी नेकियां सारी नेमतें सारे अल्लाह के एहसान और बरकतें अल्लाह ने एक कमरे में बंद करके उसको लॉक कर दिया और फातिमा का नाम उस कमरे के लॉक को खोलने के लिए है कि अगर नाम है फातिमा सही तरीके से ले लिया तो वो कमरा खुल गया तो उसमें क्या आपको मिलेगा? हर नेमत, रिस्क वहीं मिलेगा, औलाद वहीं मिलेगी, सेहत वहीं मिलेगी, दुश्मनों से बचाव वहीं मिलेगा, घरों का पीस वहीं पे मिलेगा। नेमत कोई भी अल्लाह की गिनी सब एक। अच्छा, अब एक उल्टी हदीस भी, अब यहां तक बात पहुंची तो समझा दू, तवल्ला तबर्रा दोनों किस्म की हदीस। अल्लाह ने सारे गुनाह और सारी मुसीबतें एक घर में बनकर, एक कमरे में बंद कर दी और उसका एक लॉक का, शराब और झूठ ये की है उसकी, जो शराब पीता है या बहुत ज्यादा झूठ बोलता है वो गोया अपनी मुसीबतों और परेशानियों को खुद इनवाइट कर रहा है, वो अनलॉक कर रहा। लेकिन साहिबान ईमान और आजादारान ईमान में से ना कोई झूठ बोलता है ना कोई शराब पीता है, हम तो आ रहे हैं हाजतमंद मोमिन, इल्तिमा से दुआ करवाने वाले मोमिनीन, हर एक से कोई स्पेशल अमल या दुआ मांगने वाले मोमिनीन। सारी अल्लाह की नेमतें और बरकतें एक कमरे में बंद हैं और उस कमरे की का नाम है फातिमा। कायनात के पासवर्ड का नाम है फातिमा। अगर ये नाम है फातिमा सही तरीके से इस्तेमाल करें, पूरी कायनात आपके हाथ में आ जाएगी। अच्छा, मुझे अब तक याद है 20th जमात उस्सानी थी जो शहजादी की विलादत की तारीख है, तो हमारे यहां उसमें खुशहाली का जश्न होता और उस दिन मैं करबला में था। जो हमारा ग्रुप था उसने कहा कि हम लोग जश्न करते हैं, करना चाहिए। उस तकरीर में मैंने यही बात कही, शहजादी की विलादत की रात। चुनाचे मैंने ये हदीसों की रोशनी में यही बात बयान की कि सारी कायनात की बरकतें और नेमतें आपको क्या चाहिए, जो चीज भी आप कहिए, नाम है फातिमा। हो गई तकरीर खत्म। उसके बाद एक साहब आए और कहा कि मौलाना ये आपने कहां से पढ़ दिया, देने वाला अल्लाह है, ये जो आपने कहा हर चीज फातिमा से मिलेगी। अब बात तो उनकी लंबी थी, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मुख्तसर करता हूं। मैंने कहा आज तो हम लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं शाम को, तो टाइम नहीं रहा, तो ज़ोहरैन की नमाज के बाद ये खुशहाली का जश्न था, तो बाद में मैं आपको जवाब दूंगा, ये अभी हम लोग ज़ियारत करें, असल तो हमारा मकसद ज़ियारत है। उस दिन हमें ज़ियारत करना थी करबला में, मकाम अली अकबर, मकाम अली असगर, मकाम इमाम जमाना, फुरात का दरिया और आखिर में बाग इमाम सादिक, ये ज़ियारत थी। ये ज़ियारतें करते करते हम आखिर में वहां पहुंचे तो वहां पे छठे इमाम की ज़ियारत पढ़ी जाती है। हर एक को पता है कि बाग़ इमाम सादिक क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वहां पे ज़ियारत पढ़ी जाती है जो वहां लिखी हुई है गेट पर। अब वो ज़ियारत शुरू हुई, मैंने ज़ियारत पढ़ाई, सारा ग्रुप ज़ियारत पढ़ रहा, वहां आखिरी लाइन में एक लफ्ज आ गया और वहीं मैं रुक गया। उन साहब का कंधा पकड़ा, कहा कि बस ये खत्म हो रही है आखिरी लाइन। वो लफ्ज ये था कि अस्सलामु अलैका या मिफ्ताहल खैरात, ए इमाम आपको हमारा सलाम, आप मिफ्ता हैं। अरबी में मिफ्ता के माने आज भी हैं, चाबी या कुंजी या की, कोई चीज, कोई दरवाजा खोलने वाली की, मिफ्ता। और खैरात खैर की जमा, खैर के माने नेकियां, ए इमाम सादिक आप पे हमारा सलाम, आप हर खैर, आप हर नेकी, आप हर नेमत की चाबी हैं, जो मिलता है वो आपके जरिए से मिला करता। मैंने कहा आप सवाल कर रहे थे ना कि मैंने शहजादी को कैसे कह दिया मिफ्ताहुल खैरात, आइए ये आपके सामने ज़ियारत लिखी हुई, زیارت جامعہ میں تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ میسیج ہے، نام فاطمہ. اور جب ایک مومن کی ملاقات زمانے کے امام سے ہوئی، عام مومن نہیں، اپنے زمانے میں آغائے بہجت ہی کی طرح سے انتہائی پرہیزگار پوائس و متقی، خالی پرہیزگار و متقی نہیں، مجتہد، خالی مجتہد نہیں، اپنے زمانے کا عظیم ترین مرجع جس نے ایک ایسا طریقہ شروع کیا جو اب تک رائج ہے. قم، شہزادی معصومہ قم کے حرم میں پہلے نماز جماعت نہیں ہوتی تھی، بہت پرانے نے 100 سال کے اندر کی بات، آغائے شہاب الدین ہے، مرشی ہے، نجفی نے نماز جماعت قائم کی تھی شہزادی کے حرم میں. آج آپ میں سے جو بھی ایران جاتا ہے قم میں نماز جماعت پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ آغائے مرشی بہت پرانی شخصیت نہیں، 91 میں انتقال ہوا. یہ آغائے مرشی کا واقعہ فرماتے ہیں، 4 مرتبہ زمانے کے امام اس سے ملے، اور پورے واقعات لکھے ہیں، آپ خود بھی گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹائم ہے ہی نہیں. اور ہر بار میں نے امام سے ایک سوال ضرور کیا، اور بھی کیے ہیں، ہر بار الگ الگ باتیں تھی، ایک سوال ہر بار کیا. یہ 4 ملاقاتیں ایک ہفتے میں نہیں ہوئی، یہ 4 ملاقاتیں ہوئی 70 ایئرز کے عرصے میں. آج ایک ملاقات ہوئی، 20 سال بعد دوسری، پھر ایک ملاقات ہوئی 40 سال بعد. تو ایک سوال ہمیشہ کیا کہ مولا، اگر کوئی اپنی کوئی حاجت یقینی قبول کروانا چاہتا تو اس کا کیا طریقہ؟ کہا کہ یہ دعا، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعہ فیہا. 4 مرتبہ زمانے کے امام نے کہا درود بھیجے محمد و آل محمد. چار مرتبہ زمانے کے امام نے الگ الگ، آج 20 سال بعد، پھر 15 سال بعد، پھر 25 سال بعد، جب پوچھا گیا ایک ہی جواب دیا، ہماری دادی کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور پھر یہ دیکھو کہ کیسے تمہاری حاجت پوری نہیں ہوتی. کیونکہ نام فاطمہ مفتاح الخیرات، نام فاطمہ کائنات کا پاسورڈ، نام فاطمہ تحفہ معراج، وجود فاطمہ بھی اور نام فاطمہ بھی. ہمارے سارے پرابلمز کا حل. مگر ادھر زمانے کے امام کا یہ کہنا کہ ابھی تم لوگ مکمل طور پہ تیار نہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ کا پورا گھر آج کی رات آباد ہو کے کل رات کو برباد ہو جائے، اور زمانے کا امام جسے اس خون کا انتقام لینا ہے وہ اپنے ظہور میں خود ڈیلے کروائے. یہ آج کی مجلس کا خلاصہ، صرف ہماری وجہ سے. مثلا 2, 4, 5 مومنین نہیں، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ 6 لوگ بھی اور بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن میجورٹی نہیں. آج کی رات تو وہ رات ہے کہ خاص فاطمہ کو پوری رات جاگ کر عزاداری کرنا. جو مڈ نائٹ کی مجالس ہوتی ہیں امام باڑے میں، وہاں تفصیل آئے گی. لیکن بس، فاطمہ کی ہر قربانی اپنی جگہ، بے غیرت دشمن، بے حیا دشمن، ایک ایک شہادت پہ خوشی کے شادیانے بجاتا، مگر صرف ایک شہادت خاندان فاطمہ کی ایسی جس پہ اپنے نہیں غیر، دوست نہیں خون کے پیاسے، حسینی نہیں یزیدی بھی چیخ چیخ کے رونے لگے. اور وہ ہے رباب کا اذخر. یہ کربلا کی بڑی عجیب قربانی ہے، یہ واحد قربانی ہے جس پر یزیدی روئے، اور یہ واحد قربانی ہے کہ حسین جیسا صابر कायनात में हुसैन के सब्र की कोई एग्जाम्पल है? कुरान करीम ने हुसैन के लिए एक टाइटल इस्तेमाल किया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। बड़े से बड़ा इम्तिहान दिया हुसैन, इत्मीनान। पूरे करबला में आपको हुसैन कहीं पे परेशान नजर आए? हाँ, सिर्फ एक मौके पर, वाजगर। उधर यजीदी रोए और इधर कायनात का सबसे बड़ा साबिर, जिसे कुरान कह रहा नफ्स मुतमइन्ना, मगर असगर की शहादत, हुसैन का इत्मीनान भी रुखसत हुआ। भाई मैं कहां से पढ़ रहा हूं, ये कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं? ये मैं पढ़ रहा हूं हर साल आशूर को, आपको देख के। मैं देखता हूं आप लोगों को कि आशूर का दिन आता है, आमाले आशूरा में आप लोग 7 मरतबा आगे बढ़ते और पीछे हटते हैं। इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिजन बिकवाइक व तस्लीमन लिअमरिक। पूछा गया कि भाई ये अमल आशूर का हिस्सा कैसे बना? का असगर का लाशा लेकर हुसैन फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लाशा लेके मैं क्या करूं। हुसैन परेशान, 7 मरतबा, 7, एक मरतबा नहीं। यानी जुमला तो मुझे खुद बुरा लग रहा है, लेकिन हकीकत हुसैन का डिसीजन पावर गोया वहां पे जवाब दे गया, डिसाइड नहीं कर पा रहे मुझे क्या करना। यह अकबर की शहादत पे नहीं, यह अब्बास की शहादत पे नहीं, यह कासिम के बदन के टुकड़ों में नहीं है, यह अपनी शहादत पे नहीं है, यह सिर्फ असगर की शहादत। और असगर तो मैदान करबला का अजीब मुजाहिद, अजीब मुजाहिद, खुद से नहीं आया है। हुसैन एक वादा करके लाए, यह वादा हुसैन ने अब्बास से नहीं किया, ये वादा हुसैन ने अकबर से नहीं किया, ये वादा हुसैन ने कासिम से नहीं किया। असगर मैदान करबला का अजीब मुजाहिद, वो हुसैन के साथ आने को तैयार नहीं था। एक वादा करके हुसैन लाए। हमारे बुजुर्ग उलमा एक हदीस, एक रिवायत पढ़ते हैं, 28 रजब का हुसैनी काफिला मदीने से चलने वाला, सवारियां आ गईं, शाम का वक्त करीब है। हुसैन ने ज़ैनब कुबरा को पैगाम भिजवाया, कनीज गई, पैगाम दिया कि शहजादी, मेरे आका ने कहा कि बीवियों से कहें कि बारी बारी जरा जल्दी से आ जाएं, मगरिब से पहले यह काफिला मूव कराना। पैगाम मिला, जैसे ही यह पैगाम मिला, हुसैन की नन्नी फातिमा सुगरा, जिसे अब तक उम्मीद थी शायद मेरा बाबा मुझे ले जाए, अब जब ये देखा कि सारी बीबियां जा रही, अब बजायर कोई चांस नहीं है सुगरा के जाने का, तो सुगरा रबाब के करीब आई और कहा, अम्मा रबाब, जब से मेरा ये भाई असगर पैदा हुआ मैं तो इसको देख भी नहीं सकी। 28 रजब को असगर की एज क्या थी? 2 वीक भी नहीं। सुगरा बीमार थी, बीमार से छोटे बच्चों को या न्यू बॉर्न को दूर रखा जाता। सुगरा खुद भी एहतियात कर रही थी कि अभी मैं बीमार हूं, जब ठीक हो जाऊंगी तो असगर को गोद में लेके खेलूंगी। लेकिन अब वो देखा कि 28 रजब की तारीख आ गई, बाबा का काफिला जा रहा, मेरा असगर भी जा रहा। रबाब के पास आई, का अम्मा जब से ये पैदा हुआ मैं तो सही तरीके से इसको देख भी नहीं पाई, अब आप जा रही है इसको लेकर, तो एक लम्हे के लिए मेरी गोद में दे दीजिए, जरा अच्छी तरह से भाई को देख लो। रबाब ने असगर सकीना की गोद में दे दी, सकीना भी रबाब की बेटी है और असगर भी, एक बार सुगरा की गोद में दे दिया, सुगरा ने अपनी गोद में असगर को लिया और कानों पे मुंह रख के, जैसे बच्चों का तरीका है, कहने लगी, असगर भैया सब मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे? बच्चे आपस में इसी तरह बात करते हैं। जैसे ये कहा, बहन की बात इस तरह असगर के कान से उसके दिल में उतर गई कि असगर आके चिमट गया सुगरा से। अच्छा, अब रबाब आगे बढ़ी, थोड़ी देर के लिए दिया था ना, वहां सवारियां आ गई, हुसैन का पैगाम आ गए, आगे बढ़ी और करीब आके का असगर बेटा मेरी गोद में आ, ये कह के हाथ फैला दी। असगर ने मुंह फेरा, सुगरा की गोद में मुंह छुपाए पड़ा। हुसैन का दूसरा पैगाम आया, कनीज फिर आ गई। आका ने कहलवाया है देर हो रही है, जरा जल्दी से बीबियों से कहे सवारी पे सवार। अब रबाब की बात तो असगर ने सुनी नहीं, अब दूसरी बीवियां आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, फातिमा कुबरा आगे बढ़ी, नन्नी सकीना आगे बढ़ी, असगर किसी की बात ही नहीं सुन रहा। आखिर हुसैन ने तीसरी मरतबा पैगाम भिजवाया, जैनब देर हो रही है, काफिले को जल्दी चलाना, बीबियों से कहो बाहर आए। अब खुद जैनब आगे बढ़ी, सानिये सहरा वारिस फातिमा इस्मत सुगरा की मालिक शरीकतुल हुसैन जैनब आगे बढ़ी, हाथ फैला दिया, असगर बेटा मेरी गोद में आ जा जैनब। लेकिन आज पता नहीं असगर को क्या हुआ है कि सुगरा की गोद से आने को तैयार नहीं, मुंह छुपाए। जैनब की भी बात सुनी है लेकिन आने को तैयार नहीं। चौथी मरतबा हुसैन का पैगाम नहीं आया, खुद हुसैन आ गए। जैनब बहन क्या हो गया, इन बीबियों को इतनी देर हो रही है, ये बाहर क्यों नहीं आ रही? जैनब ने कहा भैया असगर नहीं मान रहा, असगर नहीं मान रहा, असगर आने को तैयार नहीं। हुसैन असगर के करीब आए, कान पे मुंह रख के एक जुमला कहा और असगर उछल कर सुगरा की गोद से हुसैन की गोद में आ गए। एक जुमला, असगर मैं तुझे तेरी बहन से अलग ना करता लेकिन करबला के जिहाद में मुझे तेरी जरूरत है, जब तक के तू मेरा साथ नहीं देगा हुसैन का मिशन कामयाब नहीं होगा। इतना सुना असगर ने, बाबा को मेरे बाबा को अपने जिहाद में मेरी जरूरत है, बाबा का जिहाद मेरे जरिए कामयाब होगा। असगर उछल के आ गए हुसैन की गोद। बाकी सारी बातें मुख्तसर करता हूं। आशूर की से पहर आ गई, अब्बास मारे गए, अकबर मारे गए, कासिम मारे गए, औन मारे गए, मोहम्मद मारे गए, औलाद जाफर तैयार मारी गई, औलाद मुस्लिम मारी गई, औलाद अकील मारे गए, सब मारे गए। हुसैन तल्लाए जैनब यहां पे खड़े हुए, दाई तरफ देखा, बाई तरफ देखा, आवाज दी हल मिन्ना सिरिन यंसुरुना, कहीं से जवाब तो ना आया। खेमागाह से अल्लाह आपको करबला ले गया है, तो ले जैनबिया के पीछे तो है खेमागाह। खेमागाह से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। हुसैन खेमागाह में गए, जैनब क्या बात है, अभी मैं जिंदा हूं, ये बीबियां क्यों रो रही? कहा भैया जैसे ही तूने हाल में नासिरिन कहा, असगर ने अपने आप को गहवारे से जमीन करबला पे गिरा दिया, याद दिला रहा है बाबा तूने मदीने में वादा किया था मुझे भी जिहाद करना है, अभी तेरा नन्ना मुजाहिद असगर जिंदा है, अभी हल में नासिरिन न कहना, जब मैं मारा जाऊं तब हल में नासिरिन कहना। असगर ने गहवारे से गिर के याद दिलाया, बाबा अभी एक मुजाहिद बाकी है, एक नासिर बाकी है। हुसैन ने असगर को गोद में लिया और लेके फौजी आदा के सामने चले। वाकयात आपके सुने, धूप न लगे तो आबा के दामन में छुपाया। लश्कर यजीद कह रहा कि शायद हुसैन कुरान लेके आए हैं, मगर हुसैन ने आबा हटाई, एक नन्ना सा कुरान हुसैन की गोद में नजर आ रहा। हुसैन ने कहा अरे लश्कर यजीद इसकी माँ का दूध भी सूख गया है, हो सके तो इसे पानी दे दो। और फिर जलती रेती पे असगर को लिटा दिया। शायद तुम ये ख्याल कर रहे हो कि इसके बहाने मैं पानी पीऊंगा, खुद आके पानी पिला दो। फिर भी कोई आगे ना बढ़ा। हुसैन ने असगर को दोबारा गोद में लिया, असगर से कहा असगर तुम हुज्जत खुदा के पोते हो, तुम खुद अपनी हुज्जत इन पे तमाम करो। अब हुसैन को कुछ नहीं बोलना है, अब असगर को कहना है। असगर ने अपनी सूखी जबान सूखे होठों पे फेरना शुरू की और हालत ये थी कि आप तो क्या रोएंगे, सारा लश्कर यजीद मुंह फेर फेर के रो रहा। असगर की शहादत के लिए जुमला कह रहा हूं ना, या हुसैन परेशान हुए थे या उमर सात परेशान था। घबरा के हरमुला के पास आया, हरमुला अगर कुछ देर और यही मंजर रहा तो मेरी फौज मेरे खिलाफ बगावत कर देगी, इकता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को काट दे। करबला का अजीम मुजाहिद हुसैन भी परेशान हुए, عمر سعد کو بھی اصغر نے شکست دی. اختا کلام الحسین, ہر ملا ہر ملا ایک بار اپنے تیروں کو دیکھتا. عرب میں ایک بھال کا تیر آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا, دو بھال کا تیر گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا, تین بھال کا تیر اگر کسی دیوار میں سوراخ کرنا ہو یا درخت میں سوراخ کرنا ہو تین بھال کا تیر استعمال ہوتا. ہر ملا نے ایک بھال کا تیر نہیں نکالا, دو بھال کا تیر نہیں نکالا, ایک بار تین بھال کا تیر نکالا. ہائے گھوڑے کی گردن, کہاں چھ مہینے کے اصغر کا نازک سا گلا. تیر کا اپنا وزن, تیر کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. ایک مرتبہ کمان میں تیر لگایا اور تیر چلانا چاہا, ہاتھ کانپ گئے, تیر و کمان گر پڑے. دوبارہ کوشش کی پھر ناکام رہا. تیسری مرتبہ بھی جب تیر و کمان گر گئے اس کا دوست سنان قریب آیا, کہا کہ ہر ملا اگر کوئی مجھ سے کہے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے میں تیرا نام لوں گا. ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا. ہر ملا کہتے بچے کی بات نہیں, جب میں تیر پھینکنا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر کھڑی ہے, ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے. سنان نے کہا میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا. ہر ملا کی آنکھ پہ ہاتھ رکھا, تین بھال کا تیر چلا, اصغر کے گلے میں لگا. ننا گلا, نازک گلا, ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورا گلا چھت گیا, پورا گلا چھت گیا, خون کا فوارہ, خون نکلا. حسین نے تیر نکالنا چاہا, اصغر تڑپ گیا, چھ مہینے کا بچہ اصغر تڑپ گیا. حسین نے کہا اصغر مجھے پتا تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن حیدر کرار کا پوتا ہے, حسین کا بیٹا ہے, عباس جری کا بھتیجا ہے, میں تیر نکالتا ہوں تڑپنا نہیں. بھئی یہ کہہ کے تیر نکالا, تیر کیا نکلا, اصغر کا دم نکل گیا, اصغر کی جان نکل گئی, خون کا فوارہ بلند ہوا. حسین نے اپنے ہاتھوں میں چلو میں یہ خون لیا, آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ آسمان کانپ اٹھا, مولا یہ خون ادھر نہ آنے پائے قیامت تک بارش نہیں ہوگی. حسین نے یہ خون زمین کربلا پہ گرانا چاہا, زمین تھرا اٹھی, مولا یہ خون ناحق نہ آنے پائے قیامت تک کوئی سبزہ پیدا نہ ہوگا. حسین کے چلو میں اصغر کا خون ہے, انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین نے وہ خون لے کے چہرے پہ ملا, نانا رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اسی حالت میں جاؤں گا, میرے اصغر کا خون میرے چہرے پر ہے. مگر اب یہ لاشے کا کیا کریں, سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہٹے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن میں قضا ایک و تسلیم لے امرے. اور ایک بار خیمے میں لے کے گئے, رباب نے دیکھا صرف ایک جملہ کا, امسلو کا یونہر, بیٹا چھ مہینے کا تو جانور بھی زبان نہیں ہوتا, ہائے میرا ششمہ. مگر رباب آپ اسی پر حیران ہیں کہ آپ کا ششمہ چھ مہینے میں زبان ہوا؟ ارے اصغر کے زبان کو یوں سنیے, بس آخری جملے, ریاض القدس جلد دوم صفحہ 11, روایت یہ 11 محرم کا قافلہ چلنے والا. عمر سعد نے کہا سارے سر نظر آ رہے, اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا. سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا حسین خیمے میں گئے, پھر خیمے سے باہر آئے, ٹیلے کے پیچھے گئے اور وہاں کہیں اصغر کو دفن کر کے خالی ہاتھ آ گئے. اب پتہ نہیں کہاں دفن کیا, اتنا بڑا میدان. شمر نے کہا میں اصغر کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں. اور کیسے ڈھونڈا, ہاتھ میں ایک نیزہ لیا, زمین کربلا میں نیزہ گاڑتا ہے نیزہ نکالتا, نیزہ گاڑتا ہے نیزہ نکالتا, نیزہ گاڑا اب جو نکالا, نوکے نیزہ پر ششماہ اصغر کا ننا سا لاشا, بس وہ لاشا, ششماہ اصغر کا لاشا. شمر نے ایک ہاتھ سے اصغر کا لاشا پکڑا, دوسری ہاتھ سے جیب سے خنجر نکالا, اصغر کے نازک سے گلے پر شمر کا خنجر چل رہا ہے. در خیمہ پہ سکینہ کھڑی ہے, پھوپھی اممہ ہر ایک بار مارا گیا, ہائے میرا اصغر بھیا دو مرتبہ مارا جا رہا. ہائے اصغر, ہائے اصغر, ایک بار اصغر کا ماتم اپنی